हेलो कायनातीज, अभी कुछ ही दिन पहले एक नासा का स्पेसक्राफ्ट है ओसाइरस रेक्स के नाम से, वो एक एस्ट्रॉयड बेन्नू, वो उसका चक्कर लगाकर आया। बल्कि ना सिर्फ उसने चक्कर लगाया बल्कि वो उसकी उसने थोड़ी सी रेत भी वहां से ली और अब उसने इस रेत को जमीन तक पहुंचाया है। और ये पहली दफा ये नहीं हुआ, कुछ ही साल पहले एक जापानी स्पेसक्राफ्ट था हयाबूसा 2 के नाम से, वो एक और एस्ट्रॉयड रोयोगु, वो उसकी रेत जो है वो जमीन तक लेकर आया। अब ये साइंस के हिसाब से तो जबरदस्त किस्म की अचीवमेंट्स हैं, लेकिन ये इस किस्म की रेत को समझना जो है उसकी अहमियत क्या है, ये है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। हमारा निज़ाम शमसी, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, वो आज से तकरीबन 4.5 अरब साल या 4.5 बिलियन साल पहले बना था। और ये जो सैयारे हैं वो भी उसी वक्त वजूद में आए थे जैसे हमारी ज़मीन है या मरीख है या वीनस है वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो सैयारों का हिस्सा नहीं बनी, जैसे पत्थर। अब उन पत्थरों को हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं, वो छोटे साइज के भी हैं और बड़े साइज के भी हैं और वो भी सूरज का गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अब ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो जमीन के ऊपर भी टकराते रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी, और मुस्तकबिल में भी वो टकराते रहेंगे। लेकिन एस्टेरॉइड्स जो हैं वो एक लिहाज से उनमें पिछले 4.5 अरब सालों में बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं आई। सैयारों के ऊपर तो हवा की वजह से या पानी की वजह से या लावा की वजह से मुख्तलिफ किस्म की चेंजेस आती हैं, लेकिन ये जो पत्थर हैं एक लिहाज से वो निज़ाम शमसी, ये जो सोलर सिस्टम के जो शुरू के हालात थे वो उनको प्रिजर्व कर देती हैं। अब आपने ये जो ओसाइरस रेक्स है, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मिशन था, आपने उसके बारे में सुना होगा। वो 2016 में लॉन्च हुआ था और वो एक एस्टेरॉयड जिसका नाम बेन्नू है वो उसकी तरफ गया। अब ये जो बेन्नू है ये कार्बन रिच, कार्बोनेशियस इसको एस्टेरॉयड कहते हैं और तकरीबन वो आधे किलोमीटर जितना बड़ा है, यानी कि ये जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है जो काफी ऊंची है उससे वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। अब ये जो ओसाइरस रेक्स स्पेसक्राफ्ट था वो उसने उस बेन्नू, ये जो एस्टेरॉयड है, उस तक वो वहां पर पहुंचा 2018 में और फिर उसके गिर्द उसने ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। ये दरअसल काफी मुश्किल काम है क्योंकि ये एक बड़े छोटी सी वो बॉडी है, ये जो एस्टेरॉयड की खाली आधे किलोमीटर जितनी, तो उसकी ग्रेविटी भी काफी कम है। मगर इसका जो एक मकसद था वो ये था कि वहां पर वो थोड़ा सा लैंड करे एक प्रोब और उसके वो सैंपल जो हैं वो वहां से ले सके। अब ख्याल ये था कि ये जो एस्टेरॉयड है बेन्नू वो काफी स्मूथ होगा और उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर रेत बड़े आराम से मिल जाएगी। लेकिन जब ओसाइरस रेक्स वहां पर पहुंचा तो पता ये चला कि ये जो बेन्नू है एस्टेरॉयड वो स्मूथ नहीं बल्कि वो पत्थरों से भरा हुआ है, बल्कि ये बड़े बड़े इनको बोल्डर्स भी कह सकते हैं, बड़े पत्थर वहाँ पर मौजूद हैं और वो लूजली एक दूसरे के साथ ग्रेविटी के जरिए वो लिंक्ड हैं। अब ये आप तस्वीर देख रहे हैं बेन्नू की सतह की, तो आप सोच सकते हैं कि वो जो इरादा था कि वो बिल्कुल स्मूथ होगा और वहाँ पर आराम से लैंड कर जाएगा वो इतना आसान नहीं रहा। और ये जो कुछ पत्थर हैं वो काफी ऊंचे भी हो सकते हैं, कई स्टोरीज ऊंचे हो सकते हैं क्योंकि वहां पर ग्रेविटी काफी कम है। तो जैसा कि आप सोच सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस किस्म के एस्टेरॉयड के ऊपर लैंड करना जो है वो ज्यादा आसान नहीं, बल्कि जो ओसाइरस रेक्स है वो 2 साल तक इस बेन्नू को वो ऑर्बिट करता रहा और उसने और भी मुख्तलिफ स्टडीज की, लेकिन एक चीज वो ये तलाश कर रहा था कि कौन सी ऐसी जगह है जहां से वो सैंपल्स ले सके।
और फिर 2020 में इसका एक प्रोब जो है वो इस एस्टेरॉयड के ऊपर पहुंचा, और ये जो इस वक्त आप मूवी देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक्चुअल का वीडियो है जो वहां पर गया, और उसमें एक ये वैक्यूम क्लीनर किस्म की एक वो यूनिट है जिसमें उसने उसके सैंपल कलेक्ट किए और उसको वो वापस ओसायरस रेक्स तक लेकर पहुंचा। बल्कि क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि कितना मटेरियल होगा, तो इनिशियली इतना ज्यादा मटेरियल वो लेकर आया कि वो उसकी जो लिड है वो बंद नहीं हो रही थी, और ख्याल ये था कि बहुत सारा सैंपल जो है वो जाया हो जाएगा, लेकिन फिर इवेंचुअली वो बंद हुई और वो ओसायरस रेक्स का हिस्सा बन गई। और फिर 2021 में ये जो स्पेस क्राफ्ट है ओसायरस रेक्स, ये सोचें कि ये बातें जो हैं ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हो रही हैं, उसने वहां पे उसके ऑर्बिट को छोड़ा बेन्नू के, और जमीन की तरफ वो चलना शुरू हुआ। और अभी वो पिछले ही हफ्ते जो है सितंबर में, 24 सितंबर को वो हमारे जमीन तक के पास पहुंचा, और उसने ये जो कैप्सूल है जिसके अंदर तकरीबन आधा पाउंड का मटेरियल जो है इस बेन्नू का, उसका कैप्सूल उसने हमारे ज़मीन के एटमॉस्फेयर में छोड़ा, और वो फिर लैंड किया ये जो अमेरिका का एक सहरा है यूटा का, सॉल्ट लेक सिटी एक शहर है उसके करीब, और फिर वो लैंड हुआ। और हमें एग्जैक्टली पता था कि किस वक्त वो ज़मीन तक पहुंचेगा और किस इलाके में पहुंचेगा। तो आप ज़रा सोचें कि आई मीन कितनी अमेजिंग चीज है कि एक स्पेसक्राफ्ट जो जमीन से गया वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर पहुंचा वहां पे एक एस्ट्रॉयड को, उस एस्ट्रॉयड का उसने ऑर्बिट भी किया, उस एस्ट्रॉयड का उसने सैंपल लिया, और फिर वहां से वो सैंपल लेकर जमीन के ऊपर वापस पहुंचा।
और अगर आप अभी भी ज्यादा इंप्रेस नहीं, तो मैं ये बताता चलूं कि ओसायरस रेक्स जो है ये सैंपल्स को छोड़ने के बाद वो अब एक और एस्टेरॉयड की तरफ रवा दवा है, ये एपोफिस उसका नाम है, और वो 2029 में ये स्पेसक्राफ्ट वहां पर पहुंचेगा, और इस स्पेसक्राफ्ट का उन्होंने नाम जो है वो ओसायरस एपेक्स कर दिया है। लेकिन ये पहली दफा नहीं है कि इंसान जो है वो एस्टेरॉयड्स की रेत जो है वो जमीन के ऊपर लेकर आए हों, बल्कि जो जापानी जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है जैक्सा, उसके दो मिशन से पहले हयाबूसा के नाम से था जो जरा कामयाब नहीं हुआ पूरी तरह से, उसमें कंटेमिनेशन आ गई थी, लेकिन एक दूसरा स्पेसक्राफ्ट है हयाबूसा 2, वो एक और एस्टेरॉयड जिसका नाम है रयुगु, वो वहां तक गया और वो उसकी रेत को जमीन पर लेके आया 2020 में। अब ये जो बेन्नू और रयुगु हैं वो एक ही तरह के रिलेटिवली एस्टेरॉयड्स हैं, इनको कार्बन रिच या कार्बोनेशियस एस्टेरॉयड्स कहते हैं, लेकिन तमाम एस्टेरॉयड्स जो हैं वो इस किस्म के नहीं होते, कुछ जो हैं वो ज्यादा स्टोनी किस्म के होते हैं, पत्थर के किस्म के होते हैं, कुछ जो हैं उसमें आयरन जो है वो होता है, लेकिन रयुगु और बेन्नू रिलेटिवली एक जैसे हैं साइज में भी और कंपोजिशन में भी। तो एक लिहाज से ये बड़ी दिलचस्प बात होगी कि जब इसके जो सैंपल्स हैं जब उनको वो एनालाइज करेंगे और कंपेयर करेंगे, तो फिर देखेंगे कि इनमें क्या चीजें जो हैं वो एक जैसी हैं और क्या चीज जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन क्या वजह है कि हम ये एस्टेरॉयड से उसकी रेत को जमीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं? तो इसकी तीन बड़ी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि जैसा मैंने पहले कहा था कि ये जो एस्टेरॉयड्स हैं वो जो हमारे निज़ाम शमसी की शुरू की कंडीशंस थी, शुरू के जो हालात थे, वो एक लिहाज से उसको प्रिजर्व करती हैं। तो हम जब इन एस्ट्रॉयड्स को स्टडी करते हैं तो वो हमारे अपने निज़ाम शमसी या हमारे जो अपना सोलर सिस्टम है उनके ओरिजिन्स के बारे में हमें पता चलता है। अब ये जो एस्ट्रॉयड्स हैं वो हमारे ज़मीन के ऊपर भी आके गिरते हैं, लेकिन जब वो ज़मीन पर आते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में से उनका गुजर होता है, तो वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं, और फिर जब वो जमीन पर गिरते हैं तो हालांकि कोशिश तो ये होती है एस्ट्रोनॉमर्स की कि फौरन से जाके जो है वो एस्टेरॉयड का, जिसको मीटियोराइड कहेंगे, उसका टुकड़ा जो है वो फौरन से वो जमा कर लें और उसको प्रिजर्व कर दें। लेकिन कुछ थोड़ा सा भी टाइम हो तो उसमें जमीन की जो कंटेमिनेशन है वो आ जाती है। तो हमने एस्ट्रॉइड्स के सिलसिले में ये जो मीटियोरॉइड्स हैं जिनको यहां पे जमीन के ऊपर जमा किया उससे काफी कुछ सीखा है, लेकिन ये प्योर सैंपल्स नहीं। तो अब ये जो रेत आई है जो हयाबुसा 2 और ये जो ओसायरस रेक्स के तहत आई है वो एक लिहाज से प्रिस्टीन या बिल्कुल साफ सैंपल्स हैं, उसमें जमीन की कंटेमिनेशन मौजूद नहीं। बल्कि ओसायरस रेक्स का अभी इस वक्त जो है उन्होंने अभी पिछले ही दिनों वो जो सैंपल थे उन्होंने उसका केस खोला है, तो आप देख सकते हैं कि वो कितना मोहतात होके कि किसी किस्म की जमीन की कंटेमिनेशन ना आए किस तरह से किस किस्म की लैब में वो इन सैंपल्स को खोल रहे हैं। और दूसरी वजह जो है वो ये है कि एस्टेरॉइड्स ने हमारी अपनी जमीन इनकी डेवलपमेंट में भी एक अहम किरदार अदा किया हो। मिसाल के तौर पे ये जो रयुगु के सैंपल्स आए, ये जो हयाबुसा 2 लेके आया, उससे पता ये चला कि उसमें काफी पानी की मकदार मौजूद है। ये हाइड्रेटेड मिनरल्स कहते हैं, मतलब ये कि पानी जो है वो उसके रेत के साथ मॉलिक्यूल्स के साथ मिला हुआ है। तो अब साइंसदानों का ख्याल ये है कि जमीन के ऊपर जो पानी है वो काफी हद तक ये एस्टेरॉइड्स लेकर आए हैं। पहले ख्याल ये था कि कॉमेट्स जो हैं वो प्राइमरी सोर्स थे, मगर अब इस रयुगु एस्टेरॉइड के सैंपल के एनालिसिस के बाद अब ख्याल ये है कि एस्टेरॉइड्स, क्योंकि पिछले 4.5 अरब सालों में खासतौर से शुरू में बेइंतहा जमीन के ऊपर आकर टकराते रहे और जब वो टकराए तो उसके साथ जमीन पर पानी भी आया। और ये खाली पानी की बात नहीं बल्कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें जिंदगी जिससे बनी, ख्याल ये है कि वो भी इन एस्टेरॉइड्स की वजह से जमीन के ऊपर आया। तो मिसाल के तौर पे ये जो रयुगु की एनालिसिस है उसमें पता चला कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो जिंदगी के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, और ना सिर्फ बाकी अमीनो एसिड्स बल्कि एक खास मॉलिक्यूल है यूरासिल के नाम से जो आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड जो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम मॉलिक्यूल है, बल्कि ख्याल ये है कि शायद हमारी जिंदगी जो है जमीन के ऊपर वो आरएनए की वजह से शुरू हुई हो, उसका जो हिस्सा है वो यूरासिल है, और ये यूरासिल मॉलिक्यूल जो है वो इस रयुगु के सैंपल्स में मौजूद है। तो आप सोच सकते हैं कि पानी भी इन एस्टेरॉइड्स की वजह से आया और ये जो जिंदगी के मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं वो भी एस्टेरॉइड्स में मौजूद हैं और एस्टेरॉइड्स लेके आए, यानी कि एक लिहाज से ये जो जिंदगी के रॉ मटेरियल हैं जिसकी वजह से जिंदगी जमीन के ऊपर गालिबन शुरू हुई वो बहुत आम हैं और वो यहां पर लाने के लिए एस्टेरॉइड्स जो हैं वो आराम से ला सकते हैं। वैसे अगर ऑरिजिन्स ऑफ लाइफ के ऊपर आपने कायनाती गपशप देखनी हो तो उसकी 2 हिस्सों की कायनाती गपशप है, आप प्लीज उसको आप चेकआउट करें। और एक लिहाज से ये बड़ी दिलचस्प चीज होगी कि रयुगु और बेन्नु में क्या फर्क है, उसमें किस किस्म के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बेन्नु पर मौजूद हैं रयुगु के मुकाबले में। और जो तीसरी वजह है, अभी तो हम क्रिएशन की बात कर रहे हैं कि लाइफ जो है जिंदगी जो है गालिबन वो एस्टेरॉइड्स की वजह से आई हो, लेकिन जो तीसरी वजह है वो डिस्ट्रक्शन की है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगर बड़े एस्टेरॉइड जमीन के ऊपर आकर टकराएं तो उससे जिंदगी को काफी नुकसान भी होता है, बहुत सारी शायद ये जो मैस एक्सटिंक्शन हैं जिस तरह से डायनासोर्स वाली हैं उसमें लोग बात करते हैं कि शायद वो कॉमेट था या एस्टेरॉइड। तो एस्टेरॉइड्स जो हैं वो जमीन के ऊपर आकर टकराए हैं, हमारे पास बड़ी मिसालें भी हैं, ये इस वक्त आप ग्रेट मीटियोर क्रेटर देख रहे हैं जो पूरी दुनिया को जिंदगी को तो तबाह नहीं कर सकता लेकिन इस किस्म का मीटियोरॉइड जो है वो काफी तबाही पहुंचा सकता है। तो एस्टेरॉइड्स जो हैं वो जमीन के ऊपर टकराते रहे हैं माजी में, हमें पता है क्योंकि बहुत सारे क्रेटर्स मौजूद हैं, और हमें ये भी पता है कि ये जो एस्टेरॉइड्स हैं वो मुस्तकबिल में भी आकर जमीन के ऊपर टकराएंगे। तो हम किस तरह से इन एस्ट्रॉइड से बच सकें, उनको हम किस तरह से डिफ्लेक्ट कर सकें। बल्कि ये जो बेन्नू एस्टेरॉयड है, जिसको ओसायरस रेक्स, जहां से वो उसके सैंपल लेके आया, ये दरअसल एक ऐसा एस्टेरॉयड है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, और ये एक्चुअली थोड़ा सा खतरनाक है। एस्ट्रोनॉमर्स का एस्टिमेट ये है कि 2082 में, अराउंड 2082 वगैरह में, शायद थोड़ा सा चांस हो कि ये बेन्नू जो है 1 in 2000 चांस होगा उसका जमीन के ऊपर आकर टकराने का। लेकिन ये काफी कम चांस है, लेकिन अगर हम उसको समझ सकें, अगर हम उसको स्टडी कर सकें, तो फिर हम पता कर सकते हैं कि अगर हमने उसको डिफ्लेक्ट करना है और ये जो एस्टेरॉयड है वो किस किस्म का बना हुआ है। अगर वो सॉलिड पत्थर जैसा है तो उसके डिफ्लेक्शन की टेक्निक फर्क होगी, और जैसा कि पता चला कि बेन्नू और रियोगु दोनों जो हैं वो रबल जैसे हैं, तो फिर उसके लिए हमें कुछ और टेक्निक्स इस्तेमाल करनी होंगी उनको डिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ वजूहात हैं कि एस्टेरॉयड्स को स्टडी करना कितना अहम है, और अगर हम उसके सैंपल्स को लेकर आए तो हमें उनके बारे में कितना और पता चलता है। वैसे अभी मैंने कहा कि ये जो बेन्नू है उसके चांसेस जो हैं वो 2082 में हैं, बहुत थोड़े से चांसेस हैं 1 in 2000 के वो जमीन से आकर टकराए, मगर वो मेरी गलती थी, एक्चुअली वो 2182 में चांसेस हैं उसके, 2082 में नहीं। तुम्हारे पास काफी टाइम है अगर हमें पता चले कि वाकई उसका ऑर्बिट जो है वो जमीन से इंटरैक्ट करेगा। अब ये जो सैंपल्स हैं उसका क्या होगा? तो ये जो ओसायरस रेक्स वाले सैंपल्स हैं उसमें से 25% तकरीबन जो उसकी रेत है, ये टोटल सैंपल हैं आधा पाउंड के करीब, तो ये नहीं है कि वहां से वो बोरियां लेके आ रहे हैं, आधा पाउंड के करीब जो है वो रेत है, उसमें से 25% जो है वो साइंसदान जो हैं वो कई इंस्टीट्यूशन से, 200 साइंसदान तकरीबन 35 इंस्टीट्यूशंस में उसको वो स्टडी करेंगे। इसमें से जो तकरीबन 4% जो सैंपल हैं वो जाएंगे कनाडा के पास, क्योंकि ये उससे कोलैबोरेशन थी, और आधा फीसद के करीब जो उसका रेत है वो जाएगी जापान के पास, क्योंकि देखें याद है वो कंपैरिजन का वो कितना अहम है। तो ओसायरस रेक्स और हयाबूसा 2 की जो टीमें हैं वो एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं, और ये कोऑपरेशन की भी अच्छी मिसाल है। लेकिन मेरे लिए जो एक हैरत अंगेज चीज थी और एक जबरदस्त चीज है वो ये है कि 70% जो रेत है जो अभी ओसायरस रेक्स लेकर आया बेन्नू से, उसको कई साल लगे, 4 billion miles तक वो जो है वो उसने चक्कर लगाए वो लेके आया, मगर 70% जो रेत है वो उसको वो स्टोर कर देंगे, इसलिए क्योंकि उम्मीद है कि अगले 8, 10, 15 सालों में 20 सालों में हमारे पास और नई टेक्निक्स डेवलप हो गई होंगी, हमारे पास और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स आ गए होंगे जो उसको और बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें। तो ये मेरे लिए एक जबरदस्त चीज है कि देखें हम किस तरह से हम मुस्तकबिल के बारे में सोच सकते हैं, कि देखें हमारे पास अभी हमें नहीं पता कि कौन सी टेक्निक डेवलप होगी, लेकिन जो एडवांसेस हैं टेक्नोलॉजी में वो तो होंगी, तो इसको अभी इस्तेमाल ना करें, ये उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास बेहतर टेक्निक हो। और इसी तरीके से अपोलो के जो सैंपल्स थे, अपोलो मिशन जो चांद पर गया था, उसकी अभी रिसेंटली और एनालिसिस हुई, क्योंकि वो तो 50 साल पहले हुआ था, तो अब नई टेक्निक से वो अपोलो के सैंपल्स को एनालाइज करते हैं। लेकिन जाने से पहले जरा सोचें कि कितनी अमेजिंग चीज है कि ये जो पत्थर हैं एस्टेरॉयड्स, ये हमारे निजाम शमसी में घूम रहे हैं पिछले 4.5 अरब साल से, मगर हमने एक स्पेसक्राफ्ट भेजा 2 ऐसे पत्थरों को वहां पे उन तक पहुंचने के लिए, वहां से वो रेत उन्होंने उन एस्टेरॉयड से ली और फिर वो उस रेत को जमीन पर लेकर आए, और जब इन एस्टेरॉयड्स की रेत को जब हम लेकर आए तो ये जो ओसायरस रेक्स वाले जैसे सैंपल्स हैं उनको हम ट्रीट ऐसे ही करते हैं जैसे कोई सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स हो, रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स हो। मेरे लिए एक अमेजिंग चीज है कि देखें कितनी उनकी अहमियत है, और एक लिहाज से यह बात सेंस बनाती है, क्योंकि ये भी जिस तरह रिलीजन्स जो हैं वो आपको बताते हैं अपनी ऑरिजिन्स के बारे में, इसी तरह ये जो रेत के सैंपल्स हैं वो भी हमें बता रहे हैं ऑरिजिन्स के बारे में।